लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे धर्म संघियों और गुरुकुल छात्रों के प्रशिक्षण के लिए याचना करते हैं, ताकि वे मानवीय, प्रेरितिक, आध्यात्मिक और सामुदायिक विचरण के माध्यम से अपनी बुलाहट में विकसित होकर सुसमाचार के विश्वसनीय गवाह बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पाप फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 5 मई को पोप फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित करते हुए यीशु के उस कथन पर चिंतन किया, जिसमें उन्होंने अपने प्रेरितों से कहा है, अब मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। संत पापा ने कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che dice agli apostoli non vi chiamo più servi ma amici।
आज सुसमाचार पाठ हमें यीशु के बारे बतलाता है, जो प्रेरितों से कहते हैं, मैं तुम्हें सेवक नहीं बल्कि मित्र कहता हूँ। संत पापा ने कहा,
Cosa significa questo?
इसका अर्थ क्या है?
Nella Bibbia i servi di Dio,
बाइबल में ईश्वर के सेवक कुछ खास लोग हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मिशन सौंपते हैं, जैसे कि मूसा, राजा दाऊद, नबी एलिया और अंत में कुंवारी मरियम। ये वे लोग हैं जिनके हाथों में ईश्वर अपना खजाना सौंपते हैं। लेकिन यीशु के अनुसार यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हम उनके लिए कौन हैं, हमें और अधिक चाहिए, कुछ बड़ा जो वस्तुओं और खुद की योजनाओं से परे हो। संत पापा ने कहा,
Ci vuole l'amicizia.
हमें मित्रता की आवश्यकता है, हम इसे बचपन से ही सीखते हैं। यह कितना सुंदर अनुभव है, हम अपने दोस्तों को अपने खिलौने और सबसे सुंदर उपहार भेंट करते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते, किशोरों के रूप में हम अपना पहला रहस्य उन्हें साझा करते, जब हम जवान होते तो वफादारी निभाते, वयस्कों के रूप में हम संतुष्टि और चिंताएं व्यक्त करते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो अपने लंबे दिनों की यादें, विचार और खामोशियां बांटते हैं। नीति वचन की पुस्तक में ईश्वर का वचन हमें बतलाता है कि सुगंध और धूप हृदय को प्रसन्न करते हैं और मित्रता की सलाह आत्मा को नरम कर देती है। पोप ने कहा, आइए एक क्षण के लिए अपने मित्रों की याद करें और उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दें।
Non è frutto di calcolo.
मित्रता ना तो हिसाब करने ना ही जबरदस्ती करने से होता है, यह अनायास उत्पन्न होता जब हम दूसरे में अपना कुछ पहचान लेते हैं, और अगर यह सच्चा होता है तो यह इतना मजबूत होता कि विश्वासघात के सामने भी कम नहीं होता। नीति वचन की पुस्तक इसे पुष्ट करती है, जैसा कि यीशु हमें दिखलाते हैं जब वे यूदा से कहते हैं, जिसने उन्हें चुंबन के साथ धोखा दिया था,
Amico. Per questo sei qui.
मित्र, इसीलिए तुम यहाँ आए हो। एक सच्चा मित्र आपको गलतियाँ करने पर भी नहीं छोड़ता, वह आपको सुधारता है, शायद डांट कर, लेकिन आपको माफ कर देता है और नहीं त्यागता। और आज के सुसमाचार पाठ में यीशु हमें बतलाते हैं कि हम उनके लिए मित्र के समान हैं, सभी योग्यताओं और सभी अपेक्षाओं से बढ़कर एक प्रिय मित्र, जिनके लिए वे अपना हाथ फैलाते, अपना प्यार, अपनी कृपा और अपना वचन देते हैं, जिनके साथ वे अपने सबसे सुखद बातें साझा करते हैं जो उन्होंने पिता से सुना है। मित्रता के कारण ही वे हमारे लिए दुर्बल बन गए, बिना बचाव और बिना किसी दिखावे के खुद को हमारे हाथों में सौंप दिया, क्योंकि वे हमसे बहुत प्यार करते हैं, वे हमारी भलाई चाहते हैं और वे चाहते हैं कि हम उनके कार्यों में सहभागी हों। संत पापा ने चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा,
Allora, Chiediamoci.
तो आइए हम अपने आप से पूछें, प्रभु का चेहरा मेरे लिए कैसा है, किसी दोस्त का या अजनबी का? क्या मैं उनसे एक मित्र की तरह प्यार महसूस करता हूँ? और यीशु का वह कौन सा चेहरा है जिसकी गवाही मैं दूसरों को देता हूँ, विशेषकर उन लोगों को जो गलतियाँ करते हैं और जिन्हें क्षमा की आवश्यकता है? तब माता मरियम से प्रार्थना करते हुए संत पापा ने कहा,
Maria ci aiuti a crescere in amicizia col suo figlio e a diffonderla intorno a noi.
माता मरियम हमें अपने बेटे के साथ दोस्ती बढ़ाने और इसे हमारे चारों ओर फैलाने में मदद करें। इतना कहने के बाद उन्होंने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरिति का आशीर्वाद दिया।
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia que me ruisti portare, Alleluia.
Resurrexi secudixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus Fere, Alleluia.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने उपस्थित विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स कलीसिया एवं पूर्वी कलीसिया के सभी क्रिश्चियों को पास्का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और युद्ध से पीड़ित लोगों के लिए शांति की कामना की। जूलियन कैलेंडर के अनुसार रविवार को पास्का महापर्व मनाया गया। इसकी याद कर संत पापा ने पास्का महापर्व मनाने वाले सभी क्रिस्ते भाई बहनों को संबोधित कर कहा,
Invio con tanto affetto i miei auguri ai fratelli e alle sorelle delle chiese ortodosse e di alcune chiese cattoliche orientali.
मैं ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं एवं पूर्वी रीति की कैथोलिक कलीसियाओं के भाइयों और बहनों को बड़े स्नेह के साथ अपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ।
Il Signore risorto come di gioia, colmi di gioia e di pace tutte le comunità.
पुनर्जीवित प्रभु सभी समुदायों को आनंद और शांति से भर दें और उन लोगों को शांत बना दें जो कठिनाई में हैं।
A loro buona Pasqua.
सभी को खुश पास्का पर्व। तत्पश्चात ब्राजील में बाढ़ पीड़ितों की याद करते हुए संत पापा ने कहा,
Assicuro la mia preghiera per la popolazione dello stato del Rio Grande do Sul.
मैं ब्राजील के रियो ग्रांडे दो सुल राज्य की बाढ़ से प्रभावित जनता के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ। प्रभु मृतकों का स्वागत करें और परिवार के सदस्यों और उन लोगों को सांत्वना दें जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। उसके बाद संत पापा ने रोम, इटली एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया। पोप ने वैटिकन के सुरक्षा बल स्विस गार्ड के जवानों का विशेष रूप से अभिवादन किया जो 6 मई को अपना त्योहार मनाते हैं। उन्होंने कहा, मैं इस ऐतिहासिक एवं मेधावी कोर के उत्सव के अवसर पर नए स्विस गार्ड और उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद उन्होंने मीटर संघ का सहर्ष अभिवादन किया जो सभी प्रकार के बाल शोषण से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, धन्यवाद आपकी प्रतिबद्धता के लिए शुक्रिया। अपने महत्वपूर्ण कार्य साहस के साथ जारी रखें। युद्ध पीड़ित लोगों की याद करते हुए संत पापा ने कहा, और कृपया पीड़ित यूक्रेन के लिए प्रार्थना करना जारी रखें। यह बहुत अधिक पीड़ित है और फिलिस्तीन एवं इसराइल के लिए भी शांति हो ताकि बातचीत मजबूत हो सके और अच्छे फल मिल सके। उन्होंने कहा, युद्ध को नहीं संवाद को हाँ कहें। और अंत में अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Buon pranzo a tutti, arrivederci.
प्यारे मित्रों सुन जरा उपदेश नया मेरा, प्रभु ने कहा है चेलों से उनके पैर धोते हुए। हे प्यारे मित्रों सुन जरा उपदेश नया मेरा, प्रभु ने कहा
पैर धोते हुए। दूसरे को प्यार करो तुम जैसे मैंने किया, एक दूसरे को प्यार करो तुम जैसे मैंने किया। नहीं पर मित्र समझा मैंने हरदम, तुम भी करो प्यार सबसे जैसे मैंने किया, तुम भी करो प्यार।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने स्विस कोर के नए 34 सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों का स्वागत किया, जो आज दोपहर में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए हुए हैं। संत पापा ने कई युवाओं की कंप्यूटर या सेलफोन के साथ अकेले रहने की आदत की तुलना में वर्तमान के विपरीत जाकर खेल और रोम की यात्राओं के साथ सामुदायिक जीवन को पोषित करने हेतु प्रेरित किया। संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में पोंटिफिकल स्विस गार्ड के अधिकारियों और सदस्यों से मुलाकात की। संत पापा ने स्विस गार्ड्स के कमांडर कर्नल क्रिस्टोफ ग्राफ, चैपलिन फादर कोलम्बन, अधिकारियों और कोर के सभी सदस्यों और उनके परिवारों को बधाई और धन्यवाद दिया। संत पापा ने शपथ ग्रहण करने के लिए एकत्र हुए 34 गार्ड्स के साथ साथ उनके माता पिता, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का स्वागत किया और उपलब्धता एवं प्रतिबद्धता के लिए उनकी प्रशंसा की और कहा कि वे गतिविधि के माध्यम से संत पेत्रुस के अधिकारी के प्रति अपनी निष्ठा की गवाही देते हैं। हर साल 6 मई को दोपहर में वाटिकन के संत दमासुस प्रांगण में अपने परिवारों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करते हैं। यह दिन 147 स्विस गार्डों के वीर बलिदान की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 1527 में रोम में संत पापा क्लेमेंट सप्तम की रक्षा करते हुए मारे गए थे। संत पापा ने नए गार्डों के बीच सहयोग और एकता की प्रशंसा करते हुए कहा, आपके बीच एक उत्कृष्ट कोर की भावना है, बैरक में एक सकारात्मक और सम्मानजनक माहौल है, वरिष्ठों और मेहमानों के प्रति विनम्र व्यवहार है। कभी कभी लंबी अवधि की गहन और थका देने वाली सेवा के बावजूद आप उच्च स्तर की प्रेरणा और सेवा करने की इच्छा प्रदर्शित करते हैं और यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके बीच अच्छे रिश्ते हैं। आप एक साथ भ्रमण करने जाते हैं, अपनी छुट्टियां एक साथ बिताते हैं और अक्सर एक साथ बाहर जाते हैं। संत पापा ने कहा, रिश्ता ख्रिस्तियों के लिए मुख्य अनुभव है। यीशु ने हमारे सामने खुलासा किया और गवाही दी कि ईश्वर प्रेम है, वह अपने आप में एक रिश्ता है और इस रहस्य में हम अपने अस्तित्व का लक्ष्य और पूर्णता पाते हैं। अच्छे रिश्ते हमारे मानवीय और आध्यात्मिक विकास और परिपक्वता का मुख्य मार्ग है। हमारे व्यक्तित्व की अधिकांश विशेषताएं हमने माता पिता, भाई बहनों, सहपाठियों, शिक्षकों, मित्रों और कार्य सहकर्मियों इत्यादि के साथ संबंधों के माध्यम से सीखी है। यही कारण है कि वृहद स्विस गार्ड परिवार में कम से कम 2 साल की सेवा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और रचनात्मक समय है। यह सिर्फ काम की अवधि नहीं है, बल्कि जीवन और रिश्तों का एक विविध संगति में गहन संवाद का समय है। यह देखते हुए कि आजकल कंप्यूटर या मोबाइल फोन के साथ अकेले खाली समय बिताने की आदत युवा लोगों में व्याप्त है, संत पापा ने उन्हें इस धारा के विपरीत जाने और सामुदायिक जीवन को सक्रिय रूप से विकसित करने हेतु आमंत्रित किया। संत पापा फ्रांसिस के साथ मुलाकात से पहले आज सुबह 7:30 बजे स्विस गार्डों ने संत पेत्रुस महागिरजाघर में राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन की अध्यक्षता में पवित्र मिस्सा समारोह में भाग लिया। जैसा कि उल्लेख किया गया है, आज शाम 5 बजे स्विस परिसंघ के एक प्रतिनिधि मंडल और संत पापा के प्रतिनिधि के रूप में स्थानापन मोनसिन्योर एडगर पेना पारा की उपस्थिति में संत दमासो प्रांगण में 34 नए स्विस गार्ड शपथ लेंगे। और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 6 मई को प्रेरितिक भवन में अल्बानिया के राष्ट्रपति श्री बजराम बेगज का स्वागत किया। उन्होंने साम्यवादी तानाशाही के कठिन समय और यहूदियों के खिलाफ अल्बानियाई लोगों की सुरक्षा को भी याद किया। राज्य के प्रमुख ने बाद में वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन से मुलाकात की। उनके साथ राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों के सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गल्लाघेर भी उपस्थित थे। उधर चाड में विद्रोही बलों के खिलाफ सैनिकों का नेतृत्व करते हुए लंबे समय तक नेता इद्रिस डेबी की हत्या के 3 साल बाद सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। चाड के लोग आज राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए तैयार हैं। साथ ही देश लोकतंत्र में परिवर्तन करने के लिए अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में जुंटा के नेतृत्व वाले देशों के समूह में से पहला बनने जा रहा है। चाड की सेना ने अप्रैल 2021 में सत्ता पर कब्जा कर लिया, जब विद्रोहियों ने दीर्घकालिक नेता इद्रिस डेबी की हत्या कर दी थी। उनके बेटे महामत इद्रिस डेबी के सोमवार के चुनाव में जीतने की व्यापक उम्मीद है। हालांकि उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री सुकेश मसरा और 7 अन्य उम्मीदवारों से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चाड के धर्माध्यक्षों ने अप्रैल में अपने वार्षिक सत्र के बाद जारी एक बयान में संक्रमणकालीन सरकार से आह्वान किया है कि वह चुनावी नियमों के अनुपालन में प्रत्येक नागरिक की पसंद की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बढ़ावा देकर चुनावों के सुचारू संचालन और मत पेटियों में डाले गए वोटों के परिणामों की पारदर्शिता की गारंटी देने के लिए हर संभव प्रयास करे। मतदान सोमवार सुबह 7 बजे खुले और स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। नतीजे 2 सप्ताह के भीतर आने की उम्मीद है। उधर दक्षिणी ब्राजील दशकों से सबसे भीषण और लगातार बाढ़ से घिरा हुआ है, जिसमें 75 लोग मारे गए हैं और 103 से ज्यादा लोग लापता हैं। दक्षिणी ब्राजील में बारिश गत सोमवार को शुरू हुई और लगातार तेज होती जा रही है। आपदा क्षेत्र का केंद्र रियो ग्रांडे डो सुल राज्य है। नदियों ने अपने तट तोड़ दिए हैं और कई लोग जो समय पर भागने में सक्षम नहीं थे छतों पर फंस गए हैं। बहुत से क्षेत्र स्वच्छ पेयजल और बिजली से वंचित हैं। उधर भगवान बुद्ध के जन्म ज्ञानोदय और परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले बैसाख महोत्सव के अवसर पर परम धर्मपीठ या अंतरधार्मिक संवाद विभाग का संदेश मेल मिलाप और लचीलेपन को बढ़ावा देने की सामान्य जिम्मेदारी पर जोर देता है। शांति, मेल मिलाप और लचीलापन दोनों धार्मिक परंपराओं की गहराई से निहित मूल्य, ख्रिस्तीय और बौद्ध संघर्ष रहित दुनिया के निर्माण के लिए मौलिक उपकरण हैं, जिन्हें अंतरधार्मिक संवाद के लिए बने विभाग द्वारा पहचाना गया और वैशाख महोत्सव 2024 के अवसर पर भेजे गए संदेश के केंद्र में रखा गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।